अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा। शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी।
ओम शांति। बाबा के विशेष स्मृति दिवस पर हम सभी को बाबा के स्नेह में समाने का, यादों में खो जाने का बहुत सुंदर डायमंड चांस मिला है। सारे दिन में आप सभी अव्यक्त वतन की सैर करते, बाबा के अव्यक्त इशारों को कैच करते होंगे। समय प्रमाण बाबा हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रहे हैं, और बाबा की इस सीजन में अथवा कुछ वर्षों से दो शब्द बहुत अंडरलाइन कराए गए हैं, अचानक और एवर रेडी। जब इस दो शब्दों पर हम सभी विचार करते हैं, इसके कई अर्थ और कई भाव अपने अपने रूप से सभी बाबा के बच्चे नोट करते हैं। और जब बाबा कभी पूछ देते बच्चे एवर रेडी हो, तो बच्चे हाथ उठा देते हैं, हाँ बाबा हम एवर रेडी हैं, जब चाहिए आप हमको ले जा सकते हो। लेकिन बाबा का इन दो शब्दों के पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है, इस पर आज हम थोड़ा सा ही रूह रिहान करेंगे। क्योंकि अचानक के कई दृश्य हम सभी सुनते और देखते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अथवा अन्य कई प्रकार की नई नई बीमारियां, समस्याएं, नई नई प्रॉब्लम्स देश में, दुनिया में अचानक निकलती हैं, जिनकी दवाइयां, जिनकी इलाज, जिनका निवारण ढूंढने में भी बहुत समय लग जाता है। बाबा हम सबको जब अचानक शब्द की स्मृति दिलाते हैं, तो हम समझते हैं शायद इस शब्द को सुनकर हर एक के अंदर आता होगा कि कोई ऐसी घटना घटेगी जो अचानक हम इस शरीर से मुक्त होकर के बाबा के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक शब्द तीन विशेष बातों की गहराई को सिद्ध करता है, क्योंकि अचानक शरीर छोड़ना ये तो होता ही दुनिया के अंदर है, कोई बता करके तो जाता ही नहीं है, अचानक ही जाता है। भले बीमारियां भी कोई ऐसी हों, डॉक्टर्स भी कह दें, लेकिन बाबा कहते हैं डेथ की कोई डेट नहीं होती है, वो अनाउंस नहीं कर सकता है अचानक कभी भी शरीर से मुक्त हो सकता है। लेकिन तीन बातें जिन पर बाबा विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। एक तो हम सभी दिन रात बाबा की सेवाएं कर रहे हैं और हम सभी सेवाधारियों के आगे एक मूल लक्ष्य है कि हम अपने बाबा का नाम कोने कोने में बाला करें, बाबा जल्दी से जल्दी सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाए। और उसके लिए बहुत से साधन अपनाते हैं, बहुत सी सेवाएं करते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कैसे प्रत्यक्षता होगी, वो अचानक कौन सा दिन आएगा जब चारों ओर जय जयकार का नारा लगेगा, हम सभी पहले तो उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सेवाओं की मेहनत देश और विदेश में जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, निश्चय हुआ है, हर एक के दिल में आता है कि मैं कुछ करूं, मैं बाबा का परिचय जन जन को दूं। कोई भी आत्मा बाबा के संदेश से वंचित न रह जाए। मैं समझता हूं बाबा के हर बच्चे के अंदर ये उमंग अवश्य रहता है। जहां भी जाते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो उन्हें बाबा की कोई न कोई बात सुना करके बाबा की तरफ आकर्षित करना, उनको बाबा का परिचय देना, उनका संबंध जुड़ाना एक लक्ष्य रहता है। लेकिन वो प्रत्यक्षता के दिन अचानक जो आएंगे, उसकी हम सब ने क्या तैयारी की है? जो आज इतनी सेवाएं हो रही हैं, जो इतना विस्तार हो रहा है, बाबा कहता है बच्चे अचानक प्रत्यक्षता का पर्दा उठेगा, क्या आप सभी मूर्तियां सज चुकी हो? क्या इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया है जो पर्दा उठे और भक्तों को आपका साक्षात्कार हो जाए? ऐसा नहीं पर्दा उठ रहा हो और देवियां सज रही हों। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसके लिए वह रेडी हो कि आज अचानक बाबा पर्दा उठा दे कि देखो मेरे बच्चे सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व विशेषताओं से संपन्न हैं। तो हम सभी अपने आप को इस बात में क्या एवर रेडी समझते हैं कि अगर आज बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाए और लोग भक्तों की लाइन लगा दें, लाइन लग जाए, तो हम उनको तृप्त कर सकेंगे, संपन्न बना सकेंगे। हमारे पास इतना स्टॉक है जो हम अपने भरपूर स्टॉक से उन आत्माओं की प्यास बुझा सकेंगे। इसके लिए हम सभी एवर रेडी हैं, क्योंकि बाबा हम सबको इतना ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, योग की शक्तियों से श्रृंगार रहे हैं। हम सभी रोज दिव्य गुणों के गहने पहन रहे हैं। हर प्रकार से बाबा हम बच्चों को एक एक बात से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा की शिक्षाएं हमारा श्रृंगार कर रही हैं। क्या सचमुच मैं आत्मा उस श्रृंगार से सदा श्रृंगारित रहती हूं? जो अचानक अगर पर्दा खुल जाए तो मैं अपनी पावन दृष्टि से, नजर से निहाल कर सकूं, अपने वरदानी बोल से उन आत्माओं को तृप्त कर सकूं। जो कुछ हमने बाबा से पाया है उसका अपने जीवन से उनको अनुभव करा सकूं। कभी आप सब ने सोचा है कि अगर आज भक्तों की भीड़ लग जाए, अगर आज भगवान को सभी पहचानने लग जाएं, तो क्या नजारा होगा? आज इस भूमि पर 8-10 हजार भी भाई बहने आते हैं, तो उनको हर प्रकार की सेल्वेशन साधन देने का ख्याल रहता है, नहीं मिलता है तो कई आत्माएं थोड़ी अतृप्त संतुष्ट हो जाती हैं, और हर एक चाहता है कि बाबा से मैं लूं, मैं मिलूं, मैं बाबा के सामने जाऊं, मैं दृष्टि लूं। अभी तक बहुत सी आत्माएं स्वयं को भरपूर करने में लगी हुई हैं, लेना चाहती हैं, लेकिन अगर वो देने की घड़ियां आ जाएं, तो क्या मैं आत्मा इतनी तृप्त, इतनी भरपूर, इतनी संपन्न हूं? तो प्रत्यक्षता के समय दो नजारे होंगे। मान लो आज भी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए तो एक और जय जयकार होगी। जिन आत्माओं ने बाबा को पहचाना, जिन्होंने बाबा की श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो किया, जो आज्ञाकारी सपूत बाबा के बच्चे बन करके रहे, वो घुंघरू पहन करके बाबा कहता डांस करेंगे, उनके मन में डांस होगी खुशी में कि हमने तो भगवान को पा लिया, हमने तो अपना भाग्य बना लिया, हम तो उसके सहयोगी बन गए, वाह हमारा भाग्य वाह, जो भगवान इस सृष्टि पर आया और उसके साथ रहने का, पार्ट प्ले करने का, तन मन धन सफल करने का, उसकी नई सृष्टि की रचना में सहयोगी बनने का मुझ आत्मा को सौभाग्य मिल गया, खुशी में डांस करेंगे। और जो आत्माएं इतनी पालना लेने के बाद उसका रिटर्न नहीं कर पाई, वो क्या करेंगे? उनका पश्चाताप गाया हुआ है, ये एक अपने भाग्य के गुणगान कर रहे थे और दूसरे अपने भाग्य को कोस रहे थे, कर्म को कूट रहे थे। कितना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची शिक्षाएं, इतनी ऊंचा पढ़ाई पालना मिलते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अचानक अगर बाबा प्रत्यक्षता का पर्दा खोल दे तो आप सभी बैठी हुई आत्माएं अपने आप से पूछना कि सचमुच मेरे दिल से खुशी का गीत बजेगा कि वाह मेरा भाग्य वाह, या ऐसी कोई अवज्ञाएं, ऐसा कुछ अभी तक भी हम किसी भी कारण से कर रहे हैं जो सोच में पड़ जाएंगे कि अरे हमने तो समय गंवाया, संकल्प गंवाए, संपत्ति गंवाई, हमने तो कुछ भी सफल नहीं किया, पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा एक दृश्य हम सबको सुनाते हैं प्रत्यक्षता के समय, बच्चे टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, टू लेट का बोर्ड शायद बाबा की मुरलियों में अभी तक कभी कभी आप सभी सुनते हैं। टू लेट का बोर्ड क्या है? अभी लेट हुए हो, टू लेट नहीं। कई बार बाबा कहते हैं कि अंत समय में राजा जनक जैसी आत्माएं जो प्रवृत्ति के अंदर रहती हैं, जो राजाई के अंदर रहती हैं, वो एक सेकंड में समर्पित होकर के जीवन मुक्त पद प्राप्त कर लेंगी। दूसरी आत्माएं जो अभी भाग्य बना रही हैं, जो पैसे पैसे से बाबा के यज्ञ में तन मन और जो उनके पास है सच्चे दिल से बाबा को अर्पित करके अपने भाग्य को जमा कर रही हैं, वो दिन आएगा जो बाबा कहेगा बच्चे मैं बहुत बड़ा सर्राफ हूँ, मैं बहुत बड़ा सौदागर हूँ, मैं ऐसे का क्या करूंगा लेकर के जो सफल ही न हो। भाग्य बनाने से आत्माएं वंचित रह जाएंगी, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा अभी, इसलिए बाबा कहता है बच्चे लेट हुए हो, टू लेट नहीं, अभी कोई ऐसी आत्मा नहीं आई है जो पूरे यज्ञ को कहे मैं चलाऊंगी। अभी तो बाबा अपने गरीब बच्चों की बूंद बूंद से, जो बच्चे बाबा के दिल से सच्चे मन से सहयोगी बनते हैं, उनसे बाबा अपने यज्ञ को चला रहा है। क्यों कहता है, मैं इन गरीब बच्चों का भाग्य बनाने आया हूँ, इनको मुझे साहूकार बनाना है। तो आप सभी अचानक का ये दृश्य अगर आ जाए, इसी समय कोई ऐसी आत्मा को बाबा टच कर दे जो जीवन मुक्त पद का अधिकारी बन जाए और संपूर्ण समर्पण हो जाए, तो दूसरी आत्माओं का भाग्य रह जाएगा। तो आप सभी सोचना, विचार करना इस बात को, क्या मैं आत्मा बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ में बहुत सच्चे दिल से सच्चे मन से अपने समय और संपत्ति को सफल कर रहा हूं? ऐसा नहीं ये रह जाए और बाबा कहे बच्चे मैंने तो कहा था किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोल लूट जाए, किसको जलाए आग, सफल किसकी होगी। आप सभी समाचार सुन रहे होंगे, सुनते होंगे, अचानक कैसे कैसे आग लग जाती है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खाक में मिल जाती है, मिट्टी हो जाती है, सारे जिंदगी की कमाई कुछ पल में नष्ट हो जाती है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग जाती है, कभी सागर की सुनामी लहरें उसको डुबो रही हैं, कभी अचानक कोई घटना, कभी कोई घटना घटती है। लेकिन क्या मैं आत्मा इतनी निश्चिंत हो चुकी हूं जो मेरा तन मन धन सब कुछ बाबा तेरी बाबा बैंक में इंश्योर्ड हो गया है, मैंने इंश्योर कर दिया है, बाबा की तिजोरी में जमा कर दिया है और बाबा जरूर इसका रिटर्न भविष्य में मुझे देंगे, मैं एवर रेडी हूं इसके लिए, जो कुछ भी हो जाए मेरा एक भी पैसा, एक भी संकल्प, एक भी समय का खजाना कहीं भी अचानक के आए हुए तूफान में नष्ट न हो जाए, मैंने सब कुछ सफल किया है, इसमें वरेदी हूं, ये चेक करना सभी। अचानक के तीन दृश्य में एक है प्रत्यक्षता का दृश्य, जिसको आप सभी सोचना और विचार करना। इस पर बहुत बातें बाबा ने सुनाई हैं, तो मैं एक घंटे की क्लास में अधिक नहीं सुनाऊंगा। लेकिन दूसरी बात, परीक्षाएं भी साथ साथ निश्चित ड्रामा की भावी के अनुसार अचानक आनी है। हर ब्राह्मण आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है, बिना पेपर आए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई न कोई पेपर और बहुत भयानक रूप से अचानक का किसी के सामने भी आ सकता है। बाबा भी साक्षी होकर के देखेगा कि बच्चे को मैंने इतने अस्त्र शस्त्र, इतना सजाया, इतना श्रृंगारा, सब कुछ दिया, वरदान दिए, विजयी भव का वरदान दिया, लेकिन आए हुए पेपर में कितना समय नष्ट करता है, कितनी शक्तियां नष्ट करता है, हार खाता है या विजयी बन जाता है। क्योंकि अचानक का पेपर और एक तरफ से नहीं, बाबा कई बार हंसी में कह देते हैं कि बच्चे मैं माया को कहता हूं जाओ इसकी परीक्षा लेकर के आओ, ये मेरी बच्ची कहना मानती है। बहुत इस बच्चे को सम्मान है, अपना अभिमान है अपना, जाओ इसके पास देखो इसको। तो क्या मैं अगर कोई माया का, माया के पांच स्वरूप, पांचों विकार और उनके बाल बच्चे तो बहुत हैं, अगर किसी भी विकार का वार होने लगे तो मैं आत्मा अपने आप को उस पेपर में पास समझती हूं? अचानक मान लो मेरे आगे ऐसा कोई माया का पेपर आ जाए जो अहंकार दिलाने वाला हो, जो लोभ की वृत्ति उत्पन्न करने वाला हो, जो काम की भावनाएं जागृत करने वाला हो, जो उत्तेजित करके क्रोध की ज्वाला भड़काने वाला हो, या जो मोह ममता में फंसाने वाला हो। क्या मैं आत्मा इतनी अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करती हूं कि अगर माया का कोई भी तूफान, कोई भी प्रकार का विकराल रूप, कोई भी हलचल मेरे सामने आ जाए तो मैं बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से, ज्ञान और योग की वाणों से माया को परास्त कर दूंगी या माया मुझे परास्त कर देगी। क्योंकि युद्ध में एक की ही विजय होती है। और बाबा कहता, तुम सब बच्चे मेरे योद्धे हो, युद्ध का मैदान है। हर एक अपने आप से पूछे कि सचमुच अगर मेरे सामने अचानक ऐसा कोई पेपर आ जाए तो मैं आत्मा इस माया के पांचों विकारों के बड़े से बड़े रूप को और उसके छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप को पहचान करके विजयी बन सकती हूं। है मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतना मैंने अपने आप को एवर रेडी बनाया है कि बाबा आप किसी भी स्वरूप को माया की भेजो, लेकिन मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा। ऐसी एवर रेडी आत्मा बनी है। कोई भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा का तत्व पांचों स्वरूप में, जो पांच तत्वों का भी भयानक रूप, बाबा कहता अंत समय में ये भी अपना दांव निभाएगा, लेगा। पांच विकार और पांच प्रकृति के तत्व, ये दस ही इसका रावण है तुम्हारे सामने, इन दसों पर तुम्हें जीत पानी है। कोई भी प्रकृति का तत्व आपकी बुद्धि को हलचल में न लाए। इतना मैं आत्मा प्रकृति जीत बनी हूं, अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप से पूछना होगा कि क्या सचमुच अचानक अगर मेरे आगे प्रकृति का कोई भी तूफान आ जाए तो मैं आत्मा अचल अडोल रह सकती हूं। मैं एक मुरली आज पढ़ रहा था, आप भी सुनेंगे दो तीन महीने के बाद, क्योंकि मुझे तीन महीने पहले सब तैयार करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा समय आने वाला है, ये धरती हिलेगी, अर्थ कोई खोगी, डैम्स फटेंगे, जो सागर की तुमने जमीन सुखाई है वो सागर अपनी जमीन वापस लेगा, हर प्रकार से प्रकृति उथल पुथल करेगी, बहुत बड़ी सफाई होगी। मैंने शंकर को झाड़ू हाथ में दे दिया है, सफाई करेगा। अगर अचानक ये सीन शुरू हो जाए, विचार करके देखना कि अगर कोई भी प्रकृति का तत्व, अभी तो एक एक कर रहा है, लेकिन पांचों तत्व अगर एक साथ तांडव नृत्य करने लगे तो क्या मैं आत्मा उसमें प्रकृति जीत स्थिति में उस प्रकृति को भी सकाश और शक्ति दे सकूंगी, उसको भी शांत कर सकूंगी। मैंने इतना योग कमाया है, इतना मैं शक्तिशाली आत्मा बनी हूं कि ये प्रकृति मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं तो, अगर बाबा भी कहेगा बच्चे कोई बात नहीं आ जाओ मेरे पास, तो मैं इतनी एवर रेडी आत्मा हूं जो एक सेकंड में शरीर रूपी चोले को छोड़ के बाबा के पास चले जाऊं। इतना मैंने इस देह रूपी वस्त्र के भान को त्यागा हुआ है। बहुत ये देह अपने बंधन में आत्माओं को बांध करके रखती है। और आज रोज बाबा हम सबको पक्का करा रहा है, बच्चे अपने आप को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो। ये जो बार बार बाबा की मुरलियों में पॉइंट आ रही है, अंडरलाइन करा रहा, विदेही बनो, अशरीरी बनो, इस देह रूपी वस्त्र को भूलो। क्या मैं आत्मा सचमुच इन वस्त्रों से इतना हल्की, इतनी लाइट और अलग हो गई हूं? अभ्यास है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे जब अंत समय आएगा, विनाश होगा, तो जिन बच्चों ने अभ्यास किया है बार बार वतन में जाने का, घर का रास्ता जिन्होंने देख लिया है, देखा सभी ने, देखा आप सबने घर का रास्ता कि नहीं, रोज ये कमेंट्री के द्वारा आपको सिखाया जा रहा है। देखो अपने घर को, जाओ रास्ते को देख लो। जो जिन बच्चों ने देख लिया है वो तो मेरे घर में सीधे अपने बाबा के याद में, बाबा के साथ में आ जाएंगे, और जिन्होंने विचारों ने देखा नहीं वहां इस वायुमंडल में भटक जाएंगे, दुख की फीलिंग्स आएंगी, उनको धर्मराज की सजाओं का अनुभव होगा। लेकिन जिन्होंने रास्ता देखा है, जिन्होंने अपने सब हिसाब किताब चुक तो किए हैं, एवर रेडी रहते हैं, वो आत्माएं सेकंड में इस वस्त्र को उतारेंगी और अपने घर आ जाएंगी। तो उस दूसरे दृश्य को, दूसरे पेपर को अचानक के सामने लाओ। साधारण बातें, साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ऊंची पढ़ाई हम सभी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अचानक पेपर मुझ आत्मा के सामने आ जाए तो मैंने इतना विदेही स्थिति का अभ्यास किया है, इतना मैंने नष्टो मोहा निर्मोही उपराम हूं, जो मुझ आत्मा को कोई भी अपनी ओर खींचेगा नहीं, मैंने सब रस्सियां काट दी हैं, ये पुरुषार्थ मैंने किया है। कई बार बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तब बाबा की याद अंत में आएगी, नहीं तो अंत में कहीं ना कहीं बुद्धि भटक जाएगी, फंस जाएगी, लटक जाएगी। बहुत समय से हम आत्माएं अगर ये अभ्यास कर रही हैं कि मैं तो इस देह से अलग हूं, ये अलग है, मैं विदेही हूं, मैं शरीरी हूं, तब मैं अंतिम पेपर में पास हो सकूंगी। तो अचानक कोई भी पेपर आ जाए, प्रत्यक्षता और पेपर, और तीसरा है परिवर्तन। अचानक परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में मैं स्वपरिवर्तक आत्मा क्या स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन कर चुकी हूं, एवर रेडी हूं। बाबा कहता बच्चे एवर रेडी बनो, बार बार कहता, जो भी संस्कार हैं रहे हुए पुराने बीच मध्यकाल के, बाबा कहता पुराने नहीं है ये, जिनको तुम पुराने समझ रहे हो ये पुराने तो है ही नहीं, ये तो मध्यकाल के द्वापर के संस्कार हैं, विकारी संस्कार, पतित संस्कार, देह को देखने के संस्कार, देह के आकर्षण में फंसने के संस्कार, लोभ लालच के संस्कार, ये सब मध्यकाल के संस्कार हैं। तुम्हारे अनादिकाल के और पुराने संस्कार तो बहुत संपूर्ण पावन पवित्र शुद्ध संस्कार हैं। तुम तो देवता थे, कहीं पर भी फंसे हुए नहीं थे, वो संस्कार तुम्हारे असली संस्कार हैं। तो क्या मैं आत्मा सचमुच अपने पुराने संस्कारों को मोल्ड कर सकती हूँ, या मैं अपने संस्कारों को किसी के साथ मिला सकती हूँ? क्योंकि कई बार नहीं चाहते भी अचानक लगता है, अचानक जो बहुत स्नेह के संबंध थे उनमें दूरी बढ़ गई। स्नेह के थे, बहुत नजदीक के थे, लेन देन अच्छा था, बोलचाल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, पता नहीं कौन सा हिसाब किताब आया, इमर्ज हुआ और आपस में मन मुटाव होने लगा, दूरियां बढ़ने लगी। क्या मैं आत्मा सचमुच उस समय अपने संस्कारों को मोल्ड कर सकती हूँ? है मोल्ड करने की शक्ति, मिला सकती हूँ उन संस्कारों को, अगर कहीं मिलाना पड़े, कहीं झुकना पड़े। इतने नम्र संस्कार हैं या कठोर संस्कार हैं? मैं समझता हूँ आप सभी कभी कभी सोचते होंगे मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरे अपने निजी, दूसरे के संस्कार ऐसे हो तो हम सभी जानते हैं भाई ये ऐसा संस्कार वाला, ये ऐसे वर्णन करेंगे तो दूसरों के संस्कारों का हम बहुत विस्तार से वर्णन कर लेते हैं, लेकिन मेरे संस्कार कैसे हैं? दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इतने नम्र हैं, जो कहीं पर भी झुकना पड़े, कहीं भी नम्रता का अवतार बनना पड़े, माफी लेनी पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं आत्मा कर सकती हूँ? या मेरे इतने कड़े संस्कार हैं जो उस समय अहम आएगा, अभिमान आएगा, अपमान की फीलिंग आएगी, क्या होगा? अपने संस्कारों को हम चेक करें। बाबा जैसे संस्कार बने हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, नम्र हैं, अपने संस्कारों को क्या मैंने योग की अग्नि में सचमुच जलाया है। कई बार बाबा कहते हैं ये हिसाब किताब का एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब जो है कहीं न कहीं से 84 जन्म में आत्मा एक दूसरे के संबंध संपर्क में आई है और 63 जन्मों के अंदर देहाभिमान के कारण आई है। उसके हिसाब किताब एक दूसरे के साथ इतने कड़े बने हुए हैं जैसे बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। कितना वृक्ष है हिसाब किताब का, कितने संबंध हैं, कितनी लेन देन है, कितना विस्तार है। क्या मैं ब्राह्मण आत्मा उस वृक्ष को सचमुच योग की अग्नि में जला चुकी हूं, एवर रेडी हूं? थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करना, चिंतन करना कि बहुत हिसाब किताब अचानक निकलते हैं, न चाहते हुए भी ऐसे लगता है कि कहां से आ गया, इससे तो कोई मेरा हिसाब किताब नहीं था, अचानक मिल गया, अचानक दोस्ती हो गई, अचानक लेना देना शुरू हो गया, ऐसी मित्रता हो गई जो वो मेरा हो गया वो हम उसके हो गए, कहां से हिसाब किताब आ गया। और इतना झाड़ बना हुआ है जैसे वृक्ष है, एक से बाद एक, एक के बाद एक, कहां के संबंध कहां, अगर हिसाब लगाने लगो तो संबंधों का भी एक जाल है, एक विस्तार है। कईयों का तो लेन देन का इतना हिसाब किताब है, सोते भी ऐसे ऐसे गिनती करते रहते, उंगलियां चलती रहती, कहां बुद्धि एकाग्र होती है, कहां स्थिर होती है, कहां कहां वो भटकती है, किस में जाती है। एवर रेडी आत्मा की निशानी क्या होगी, एक सेकेंड में बाबा के बच्चे स्टॉप और संकल्प स्टॉप हो जाए। ना अच्छे संकल्पों का विस्तार हो, ना व्यर्थ संकल्पों का विस्तार हो। बाबा कहता शरीरी बन जाओ, बाबा कहता व्यक्त वतनवासी बन जाओ, बाबा कहता बच्चे बीज रूप बन करके सकाश दो, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके लाइट और माइट दो। क्या मैं आत्मा ऐसी एवर रेडी हूं, सचमुच हूं? अगर एक सेकेंड के लिए बाबा के बच्चे आ जाओ मेरे पास, चलो मदद करो इस दुनिया को, इस सृष्टि ग्लोब पर बैठ करके लाइट और माइट दो। मैं आत्मा इतनी लाइट हूं, इतनी हल्की हूं, इतनी एकाग्र हो सकती हूं जो कोई हिसाब किताब मुझे खींचे नहीं। इसका नाम है एवर रेडी। किसी भी प्रकार की सूक्ष्म रस्सी मुझ आत्मा को खींच नहीं सकती। इसके लिए मैंने साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास किया है। साक्षी स्थिति में स्थित रहता हूं कितना समय? बाबा कहता कई बच्चे न्यारे बन जाते हैं तो न्यारा बन के किनारा कर लेते हैं, और प्यारे बन जाते हैं तो वो अपना समझने लगते हैं, फंस जाते हैं आकर के। बाबा जैसा बैलेंस है, कितना न्यारा कितना प्यारा बैलेंस, साथ साथ अभी देखो इतनी प्यार की पालना दे रहा है, ऐसे लगता है बस बाबा तो हमारा इतना प्यारा हमारा है, और अभी देखो एक सेकंड में न्यारा हो जाता है, उपराम हो जाता है। बाबा के समान में आत्मा न्यारी प्यारी एकदम ऐसे लगे कि जैसे सब अपने हैं, कोई अपना नहीं है। वो साक्षीपन की स्थिति का मैंने अभ्यास किया है हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए। कोई का बहुत अच्छा पार्ट है और कोई का एकदम अचानक जो स्नेही है मेरे नजदीक का है उसका दर्द भरा पार्ट शुरू हो जाए, दुख भरा पार्ट शुरू हो जाए, क्या मैं उस दुख दर्द के पार्ट के साथ दुखी तो नहीं हो जाऊंगा? मैं इतना साक्षी हो हूं जो साक्षी दृष्टा बन करके उसके पार्ट को देखूं और उसको जो मदद चाहिए, सो भावना की, अच्छे विचारों की, अच्छे संकल्पों की मदद, क्या मैं उसको दे सकता हूं या मैं उसके दुख में दुखी हो जाऊंगा? कहीं तो किसी के सुख में सुखी हो जाते और दुख में दुखी हो जाते। बाबा कहता बच्चे एवर रेडीमाना, बिल्कुल न्यारा प्यारा उपराम। कहीं भर भी कोई सूक्ष्म रस्सी भी किसी रग की लगाव की फंसी हुई न हो, इतना मैं आत्मा उपराम हो जाऊं। तो मैं समझता हूं कि अचानक का कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, शरीर की आ जाए, संबंधों की आ जाए, धन की आ जाए, सरकार की तरफ से आ जाए, किसी भी परिवार से, किसी तरफ से भी आ जाए, लौकिक से या अलौकिक से, अपने आप से पूछना कि अगर कोई पेपर ऐसा आ जाए, कईयों के सामने थोड़ा सा पेपर आता है वो बाबा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, आता है छोटा सा पेपर, कुछ बात हो गई, न बाबा अच्छा लगता है, न मुरली अच्छी लगती है, न ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है। क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है मेरी? हम अपने आप से बातें करें कि अगर कोई भी हलचल, कोई भी माया की विघ्न, कोई भी माया का तूफान किसी भी स्वरूप में आ जाए, मैं तो तेरा हूं, मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ सकता, बाबा ही मेरा सहारा है, वही मेरा साथी है, उसको मैंने जीवन दी है, किसी इंसान को नहीं। यदि मैं आत्मा सचमुच एक बाबा दूसरा न कोई उस पर न्योछावर हूं, एक बल और एक भरोसे के आधार पर चलता हूं, एक बाबा ही मेरी नजरों के सामने बसता है, कोई भी पेपर आएगा बाबा अपने आप उस बच्चे को पाल ले जाएगा, मदद कर देगा। तो हम आप सभी इस संगम युग की घड़ियों में अपने आप को बहुत बारीकी से, बहुत नजदीक जाकर, अंदर जाकर, बाबा कहता बच्चे जब चांस मिलता है, जब ऐसा समय मिलता है एकांत का, विशेष अपने आप को देखो, अंतर्मुखी बन करके अपने आप से बातें करो। मैं आत्मा एवर रेडी हूं, अगर आज बुलावा आ जाए तो कोई भी बंधन मुझे खींच नहीं सकता। मैं इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल बन गई हूं जो मैं बाबा के समान बनकर बाबा के साथ जा सकती हूं। तो अंतिम पेपर्स को, अंतिम नजारों को, क्योंकि अभी अचानक की अकाले मौत के दृश्य भी सामने आते, प्रकृति की आपदाएं भी ऐसी ऐसी सामने आती हैं जो कोई को हल नहीं दिखाई देता, अब क्या होगा। ऐसे समय में हम सभी को बाबा कहता है बच्चे तुम मास्टर सहारे दाता बनो, तुम दूसरों को सहारा देने वाले बनो, तुम सहारा ढूंढो नहीं, मेरा कौन सहारा है, मेरी कौन मदद करेगा। बाबा कहता मैं तो अपनी बच्चों की मदद के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारा संबंध इतना सच्चा हो, इतना बाबा में विश्वास हो, इतना बाबा से प्यार हो, इतना दिल से बाबा कहो जो बाबा एक सेकंड में आपके साथ हाजिर हो जाए, बाबा का कंबाइंड रूप में अनुभव करो, और अनुभव नहीं करो लेकिन बाबा कहता है मेरे कंबाइंड स्वरूप को यूज करो। मैं सर्वशक्तिमान हूं, अगर कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई संस्कार इमर्ज भी होता है तो मेरी शक्ति को साथ लेकर के उस पर विजयी बन जाओ, विजयी भाव का वरदान ले लो। तो अचानक और एवर रेडी जैसे ब्रह्मा बाबा ने बन करके दिखाया, हमारी दादियों ने बन करके दिखाया, एक सेकंड में इन वस्त्रों को छोड़ करके बाबा के समान, बाबा की आज्ञाकारी बन करके वतनवासी बन गई। हम सबसे बाबा चाहता है कि कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध आपको खींचे नहीं, इतने न्यारे प्यारे बन करके, इतने उपराम रह करके, बाबा के प्यार में समा करके, बाबा से शक्तिशाली बन करके, सर्व शक्तियों और सर्व गुणों को, सर्व शस्त्रों को, क्योंकि कई बार बाबा कहता है अगर कोई भी कमी कमजोरी होगी तो उसी कमजोरी में पेपर आएगा, उसी कमजोरी का पेपर बन करके आएगा, इसलिए हर शस्त्र को देखो। तीन शक्तियां हर एक के साथ जरूर होनी चाहिए। सबसे पहली शक्ति है बुद्धि, समय पर ठीक निर्णय करे। क्या करना है क्या नहीं करना, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, बुद्धि को डिस्टर्ब होने नहीं देना। कोई भी पेपर आएगा पास हो जाओगे, बाबा टचिंग देख देगा। कई बार बाबा कहता मैं तो बच्चों को टच करता हूँ, मैं तो बच्चों को हलो हलो करता हूँ, लेकिन अपना रिसीवर उतार के रख दिया तो मैं क्या करूं। अपनी बुद्धि को लाइन को इंगेज कर दिया इधर उधर की बातों में, इधर उधर के संबंधों में, ये मदद कर देगा वो मदद कर देगा वो मदद कर देगा। मैं मदद करना चाहता हूँ बच्चों को, लेकिन मैं कैसे करूं जब उनकी बुद्धि की लाइन इंगेज है। इसलिए बुद्धि को बहुत साफ स्वच्छ पवित्र रखना, जिससे लाइन क्लियर हो और निर्णय ठीक हो और हर परिस्थिति में सहन कर सके, हर परिस्थिति का सामना कर सके। निर्णय करें, सहन कर सकें और सामना कर सकें, ये तीनों शक्तियां। वैसे तो सर्व शक्तियां साथ साथ चाहिए, कहीं समाना पड़ता है कहीं परखना पड़ता है, लेकिन अगर निर्णय शक्ति ठीक है, परखने की शक्ति ठीक है, सहन करने और समाने की शक्ति है, तो आने वाले कई पेपर्स को हम सहज रीति से पार कर लेंगे। तो उसके लिए हम सब एवर रेडी बने और बाबा से विशेष शक्ति लेकर के, बाबा कहते हैं स्मृति दिवस पर जो वरदान चाहे मेरे से ले सकते हो। अब बाबा के इस स्मृति दिवस पर आप सभी आए हो, इतना बुद्धि को स्वच्छ रखना, इतना शांत रखना, जो बाबा आपकी वरदानों की झोली भर दे। वतन से आए ऐसे लगे कि जैसे बाबा ने बच्चों को जो कुछ दिया उनकी झोली में भर गया, बह न जाए। तो हम सभी अव्यक्त दिवस का लाभ लें, अव्यक्त मास का लाभ लें और बाबा को कहें बाबा भले आप घंटी बजाओ, मैं एवर रेडी हूं, मैं अचानक के दृश्य में पास हो जाऊंगा, मुझे पास विथानर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा पक्का सबूत बाबा को चाहिए। हाथ उठाने वाले ने बहुत दिल से अपने आप को तैयार करके बाबा के आगे रखें कि हम संपूर्ण हैं, संपन्न हैं, बाबा भी आप भले परिवर्तन करो। ठीक है, ओम शांति।